एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, आज हम एक अहम किताब पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी किताब जो शायद हम सबके मन में उठने वाले सबसे बड़े सवाल, भाई यह खुशी कैसे मिलती है, उसे एक बिल्कुल अलग ढंग से देखती है।
हाँ बिल्कुल, अक्सर हमें लगता है ना कि खुशी कोई मंजिल है, कहीं पहुंच गए या कुछ पा लिया तो बस मिल गई खुशी।
हाँ, जैसे कोई लॉटरी का टिकट। पर ये किताब इस सोच को पूरी तरह पलट देती है।
सही कहा, ये कहती है कि खुशी कोई बाहरी चीज नहीं जिसे हम पकड़ लें, ये तो अंदर की बात है, समझिए एक हुनर है जिसे सीखना पड़ता है।
और हम बात कर रहे हैं परम पावन दलाई लामा और डॉक्टर हॉबर्ट सी कटलर की विश्व प्रसिद्ध किताब द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस की।
हाँ, हिंदी में कहें तो खुशी की कला, जीवन जीने की एक गाइड। बहुत ही सीधा और गहरा नाम।
और देखे ना, आज के समय में ये मौजूद कितना जरूरी हो गया है।
ओ, बहुत ज्यादा।
चारों तरफ इतनी भागदौड़, इतना तनाव, चिंता, कौन है जो सुकून नहीं चाहता, वो गहरी वाली खुशी।
बिल्कुल, और ये किताब यही वादा करती है, ये रास्ता दिखाती है कि बाहरी हालात जैसे भी हों, है ना,
हाँ,
हम अपने अंदर खुशी पैदा करने की काबिलियत रखते हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचो टाइप बात नहीं है।
नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये अपने मन को, अपने दिमाग को साधने की, ट्रेन करने की एक कला है ना। दिलचस्प।
बेहद दिलचस्प। और इस किताब को जो चीज और भी खास बनाती है वो है इसके लेखक। क्या कमाल का संगम है।
हाँ, बताइए जरा उनके बारे में।
एक तरफ है परम पावन 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सा, तिब्बती बौद्ध धर्म के सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु।
नोबेल शांति पुरस्कार विजेता भी हैं।
हाँ, 1989 में मिला था और दुनिया भर में उन्हें शांति और करुणा का प्रतीक माना जाता है। लेकिन सिर्फ उपाधियां नहीं, उनकी अपनी जिंदगी। उन्होंने निर्वासन का दर्द झेला है, अपने लोगों की तकलीफें बहुत करीब से देखी हैं, इसके बावजूद उनके चेहरे पर वो शांति, वो मुस्कान और उनकी बातों में इतनी करुणा। वो जो सिखाते हैं उसे जीते हैं, वो चलते फिरते उदाहरण है।
बिल्कुल। और दूसरी तरफ कौन है?
दूसरी तरफ है डॉक्टर हॉवर्ड सी कटलर। वो एक अमेरिकी मनोचिकित्सक है, एक साइकाइट्रिस्ट।
अच्छा।
तो वो लाते हैं पश्चिमी विज्ञान का नजरिया, मॉडर्न साइकोलॉजी की समझ। मुझे लगता है एक तरह से वो हम जैसे पाठकों के प्रतिनिधि हैं।
हाँ, मतलब वो सवाल पूछते हैं जो हमारे मन में आते होंगे।
एग्जैक्टली, वो थोड़े जिज्ञासु हैं, शायद कहीं कहीं थोड़े शक्की भी। वो पूछते हैं कि भाई ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर आम जिंदगी में ये कैसे काम करेगा, प्रैक्टिकल सवाल।
तो वो दलाई लामा की गहरी, शायद थोड़ी आध्यात्मिक बातों को हमारे लिए, मतलब आम इंसान के लिए, आसान बनाते हैं।
बिल्कुल, वो एक पुल का काम करते हैं और यही मेल, यही जुगलबंदी इस किताब को अनोखा बनाती है। ये सिर्फ बौद्ध धर्म पर लेक्चर नहीं है।
और ना ही कोई टिपिकल सेल्फ हेल्प किताब।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हजारों साल पुरानी बुद्धि और आज की साइकोलॉजी के बीच एक सेतु है। ये पूरब के ज्ञान को पश्चिम के तर्कशील मन के लिए सुलभ बनाती है, समझने लायक बनाती है।
और शायद इस्तेमाल करने लायक भी।
हाँ, सबसे जरूरी। उनकी बातचीत पढ़ते हुए लगता है जैसे वो मुश्किल से मुश्किल फिलॉसफी को रोजमर्रा की उलझने सुलझाने के टिप्स में बदल रहे हो।
मतलब ये हुआ कि खुशी पाने के लिए किसी को बौद्ध बनने की जरूरत नहीं है।
कतई नहीं। ये किताब मानवीय मूल्यों की बात करती है, दया, करुणा, धैर्य और मन को ट्रेनिंग देने की बात करती है। ये तरीके कोई भी अपना सकता है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो।
ठीक है, तो अगर पूरी किताब का सार निकालना हो, उसका निचोड़, तो क्या कहेंगे, इसका मेन मकसद क्या है?
देखिए, सीधे शब्दों में कहूं तो ये किताब एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड है, हाथ पकड़कर सिखाने वाली।
अच्छा।
ये सिखाती है कि हम अपने मन और दिल को कैसे ट्रेन करें, कैसे साधें, ताकि जिंदगी में एक गहरा टिकाऊ संतोष पा सकें, जिसे हम सच्ची खुशी कह सकते हैं।
और ये उस सोच को चुनौती देती है कि खुशी किस्मत से मिलती है।
हाँ, या किसी बाहरी चीज पर टिकी होती है, पैसा, शोहरत, कामयाबी। ये कहती है नहीं, खुशी एक अनुशासन है, एक कला है।
कला? ये शब्द बड़ा दिलचस्प है। जैसे संगीत एक कला है, पेंटिंग एक कला है।
बिल्कुल, और जैसे कलाकार रोज रियाज करता है, अभ्यास करता है, वैसे ही खुशी पाने के लिए भी मानसिक अभ्यास, मेंटल प्रैक्टिस जरूरी है। ये अपने आप नहीं आ जाती।
हम्म, और किताब का फॉर्मेट भी इसी बातचीत वाला है ना, मतलब सवाल जवाब जैसा।
हाँ, पूरी किताब दलाई लामा और डॉक्टर कटलर के बीच हुई कई मुलाकातों का नतीजा है। कटलर एक मनोचिकित्सक होने के नाते आज के इंसान की परेशानियां सामने रखते हैं, तनाव, रिश्ते, काम का प्रेशर, डर, अकेलापन, ये सब
जो हम सब महसूस करते हैं कभी ना कभी।
बिल्कुल। और दलाई लामा अपने विशाल अनुभव और बौद्ध परंपरा की सदियों पुरानी समझ के आधार पर उनका जवाब देते हैं। वो एक नया नजरिया, एक समाधान सुझाते हैं।
सुना है किताब एक तरह की यात्रा पर ले जाती है, शायद शुरुआत में उन चीजों का पर्दाफाश करती है जिन्हें हम गलती से खुशी समझ लेते हैं।
हाँ बिल्कुल, शुरुआत वहीं से होती है जो आम धारणाएं हैं ना, कि खूब पैसा होगा तो खुश रहेंगे, बड़ी पावरफुल पोस्ट मिल जाएगी तो खुश रहेंगे। किताब पहले इन मिथकों को तोड़ती है।
अच्छा।
फिर वो ध्यान ले जाती है खुशी के असली इंग्रेडिएंट्स पर, जैसे कि अच्छे गहरे इंसानी रिश्ते कितने जरूरी हैं, करुणा का भाव क्यों इतना शक्तिशाली है, और सबसे मुश्किल शायद अपनी नेगेटिव भावनाओं को कैसे संभालें, गुस्सा, जलन, डर।
ये तो बड़ा मुश्किल काम है।
है, लेकिन नामुमकिन नहीं। किताब तरीके बताती है, और ये भी कि दुख और तकलीफों को कैसे देखें।
हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। क्या कहती है किताब इस बारे में?
ये कहती है कि मुश्किलों से भागो मत, उन्हें विकास का, सीखने का एक मौका समझो। ये बताती है कि कैसे दर्द और पीड़ा हमें ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और ज्यादा हमदर्द बना सकते हैं।
वाह।
इसके अलावा मन कैसे काम करता है, रिश्तों का क्या महत्व है, और आध्यात्मिकता, जिसे यहाँ किसी खास धर्म से नहीं बल्कि अच्छे इंसानी गुण बढ़ाने से जोड़ा गया है, इन सब पर बहुत अच्छी गहरी चर्चा है।
चलिए अब कुछ मुख्य विचारों में और गहरे उतरते हैं। किताब की शुरुआत ही इस बात से होती है कि जीवन का मूल उद्देश्य खुशी खोजना है। सुनने में ये बात बड़ी सीधी लगती है, पर क्या इसमें कोई खास बात है?
खास बात यह है कि हम अक्सर खुशी और मजे में कन्फ्यूज हो जाते हैं। किताब अध्याय 1-2 ये फर्क साफ करती है। जो मजा हमें इंद्रियों से मिलता है, सेंसरी प्लेजर, जैसे कुछ अच्छा खा लिया, कहीं घूम आए।
हाँ, वो तो थोड़ी देर का होता है।
बिल्कुल, वो आता जाता रहता है। लेकिन असली टिकाऊ खुशी, जिसे किताब जेन्यून हैप्पीनेस कहती है, वो मन और दिल की एक अवस्था है, एक गहरा संतोष। और सबसे बड़ी बात यह है अध्याय 3 कि ये खुशी बाहरी चीजों पर उतनी निर्भर नहीं करती।
अच्छा, किस पर करती है फिर?
हमारे अपने नजरिए पर, हमारी सोच पर, हमारे मन की स्थिति पर। यहीं से वो मेंटल ट्रेनिंग यानी मन को साधने का आइडिया आता है।
मन को साधना, सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, कहाँ से शुरू करें भला?
किताब एक बहुत ठोस, बहुत प्यारी शुरुआत बताती है, मानवीय गर्म जोशी और करुणा भाग 2, मतलब दूसरों के प्रति प्रेम और दया का भाव। किताब कहती है कि हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं, हमें कनेक्शन चाहिए, दूसरों से जुड़ाव, स्नेह, सहानुभूति, ये हमारी बेसिक जरूरतें हैं और ये खुशी के लिए बहुत जरूरी हैं। अध्याय 3-5
ये तो समझ आता है।
लेकिन फिर एक क्रांतिकारी विचार आता है अध्याय 4-7, अगर आप खुद खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों के लिए करुणा का अभ्यास करें।
ये तो उल्टा लग रहा है, मतलब दूसरों का भला सोचें ताकि मेरा भला हो।
हाँ, सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये काम करता है। सोचिए, जब हम सच्चे दिल से किसी और की तकलीफ कम करने की सोचते हैं या उसकी खुशी चाहते हैं, तो क्या होता है? हमारा ध्यान अपने मैं, मेरा, मेरी चिंताएं, इनसे हट जाता है।
अच्छा।
और जैसे ही ध्यान खुद से हटकर दूसरों पर जाता है, हमारा अपना डर, अपना गुस्सा, अपना अकेलापन, वो कम होने लगता है। दूसरों के लिए अच्छा महसूस करना असल में हमें खुद के लिए अच्छा महसूस कराता है। ये स्वार्थ का सबसे समझदार रूप है, कह सकते हैं।
वाह, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। लेकिन जिंदगी में सिर्फ अच्छा अच्छा तो होता नहीं, दुख भी आते हैं, तकलीफें भी आती हैं। किताब इनसे कैसे डील करने को कहती है?
भाग 3, यहीं पर किताब की एक बहुत फेमस मिसाल आती है, 2 तीरों की कहानी।
अध्याय 5, 2 तीर कैसे?
पहला तीर है वो असली घटना जो दुख देती है, कोई बीमारी हो गई, कोई नुकसान हो गया, रिश्ता टूट गया, नौकरी चले गई, ये जिंदगी का हिस्सा है, इसे हमेशा टाला नहीं जा सकता, ये दर्द देता है, ये है पहला तीर।
ठीक है, और दूसरा?
दूसरा तीर हम खुद अपने आप को मारते हैं, वो है हमारी प्रतिक्रिया, हमारा गुस्सा, हमारा डर, खुद पर तरस खाना, हाय मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ वाली सोच। किताब कहती है कि ज्यादातर दुख, ज्यादातर पीड़ा इसी दूसरे तीर से आती है, और सबसे जरूरी बात, ये दूसरा तीर ऑप्शनल है, हम चुन सकते हैं कि ये तीर चलाना है या नहीं।
अरे वाह, मतलब दर्द होना तो शायद तय है, पर दुखी होना या न होना वो कुछ हद तक हमारे हाथ में है।
बिल्कुल, काफी हद तक। और आगे अध्याय 6 किताब ये भी बताती है कि मुश्किलों से गुजरकर हम असल में और मजबूत बन सकते हैं। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही कठिनाइयां हमें हिम्मत, सहनशीलता और दूसरों का दुख समझने की क्षमता यानी सहानुभूति सिखा सकती हैं।
शर्त यह है कि हम उनसे सीखने को तैयार हों।
एग्जैक्टली, सब कुछ हमारे नजरिए पर निर्भर करता है।
नजरिया, हाँ, इस पर भी किताब में जोर है।
बहुत जोर है। अध्याय 7, इसे कहते हैं द पावर ऑफ पर्सपेक्टिव, नजरिए की ताकत। देखिए, एक ही घटना को देखने के कई एंगल हो सकते हैं। अगर हम सिर्फ नेगेटिव पहलू पर अटक जाएंगे तो दुखी ही रहेंगे।
हाँ, ये तो होता है।
लेकिन अगर हम जानबूझकर कोशिश करके दूसरा नजरिया ढूंढें, जैसे चलो इस मुश्किल में सीखने को क्या मिल रहा है, या कम से कम मेरे पास ये चीज तो है, या अपनी हालत की तुलना किसी और बुरी हालत वाले से करें, तो हमारी भावनाएं बदल सकती हैं। ये कोई जादू नहीं, ये दिमाग का अभ्यास है।
ये तो हुई दुख से निपटने की बात, पर कुछ भावनाएं ऐसी हैं जो हमें अंदर ही अंदर खाए जाती हैं, जैसे गुस्सा या नफरत, इनका क्या करें? भाग 4।
किताब इन्हें खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। अध्याय 9, जरा सोचिए गुस्सा क्या करता है? हमारी शांति छीन लेता है, रिश्तों में कड़वाहट घोलता है और हमारी सोचने समझने की शक्ति कम कर देता है, है ना?
बिल्कुल, गुस्से में आदमी सही गलत नहीं देख पाता।
तो इनसे निपटने के तरीके भी बताए हैं। पहला, धैर्य का अभ्यास, एकदम से रिएक्ट ना करें। दूसरा, गुस्से का उल्टा क्या है? करुणा। जिस पर गुस्सा आ रहा है उसके लिए करुणा जगाने की कोशिश करें। ये मुश्किल है मानती हूँ, पर संभव है। सोचें कि शायद वो भी किसी परेशानी में है।
और तीसरा?
तीसरा, तर्क का इस्तेमाल। खुद से पूछें, क्या गुस्सा करने से कोई फायदा हो रहा है? क्या इससे समस्या हल हो जाएगी? ज्यादातर जवाब नहीं होता है। ये समझ गुस्से को ठंडा कर सकती है।
और चिंता, एंजाइटी, वो तो आजकल जैसे महामारी बन गई है, और बहुत से लोग कम आत्मसम्मान, लो सेल्फ एस्टीम से भी जूझते हैं।
हाँ, इन पर भी बात हुई है। अध्याय 10, किताब कहती है कि ये समस्याएं अक्सर जरूरत से ज्यादा मैं केंद्रित होने से जुड़ी होती हैं। जब हम हर वक्त बस अपने बारे में सोचते रहते हैं, मैं कैसा लग रहा हूँ, लोग क्या सोच रहे होंगे, मेरा क्या होगा, तो चिंता और असुरक्षा बढ़ती जाती है।
तो इसका इलाज क्या है?
फिर वही जवाब, करुणा। जब हम अपना ध्यान दूसरों की भलाई पर लगाते हैं, उनकी मदद करने की सोचते हैं, तो अपनी परेशानियां अपने आप थोड़ी छोटी लगने लगती हैं। दूसरों के काम आने से, चाहे वो छोटा सा ही काम क्यों ना हो, हमें अपनी कीमत का एहसास होता है। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है।
और आखिर में आध्यात्मिकता की बात भी आती है। भागवी, क्या इसका मतलब पूजा पाठ या किसी खास धर्म से है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ आध्यात्मिकता का मतलब बहुत बड़ा, बहुत सेक्युलर है। ये किसी संगठित धर्म या कर्मकांड से नहीं जुड़ी। इसका मतलब है अच्छे इंसानी गुणों को विकसित करना, जैसे दया, करुणा, धैर्य, ईमानदारी, माफी। इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाना।
अच्छा, मतलब ये एक प्रैक्टिकल रोज का अभ्यास है?
हाँ, ये एक लगातार चलने वाला अभ्यास है। किताब साफ कहती है, खुशी कोई मंजिल नहीं है कि पहुंच गए और काम खत्म। ये तो एक सफर है, एक कला है, जिसे रोज निखारना पड़ता है, रोज उस पर काम करना पड़ता है। तो अगर इस पूरी चर्चा को, इस गहरी बातचीत को हम कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटें, तो वो कौन सी 3-4 बातें होंगी जो सबसे ज्यादा अहम है, जो श्रोताओं को याद रखनी चाहिए?
मेरे ख्याल से पहली और सबसे बुनियादी बात तो यही है, खुशी बाहर नहीं, अंदर है। ये हमारी परिस्थितियों पर उतनी निर्भर नहीं करती जितनी हमारे मन की स्थिति और हमारे नजरिए पर। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये नजरिया, ये मानसिक स्थिति, इसे बदला जा सकता है, इसे एक हुनर की तरह सीखा जा सकता है।
बिल्कुल, मतलब खुशी किस्मत की बात नहीं, कोशिश की बात है।
हाँ, जैसे बागबानी होती है ना, बीज बोना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है, ये वैसी है। दूसरी अहम बात है करुणा की अद्भुत शक्ति।
हाँ, ये तो बहुत जरूरी है।
दूसरों का भला चाहना और करना, ये सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा नहीं है, ये असल में खुद की खुशी बढ़ाने का सबसे पक्का, सबसे टिकाऊ तरीका है। ये हमें अपने स्वार्थ के छोटे से दायरे से बाहर निकालता है।
इसे आप समझदारी भरा स्वार्थ कह सकती हैं। तीसरी बात जो मुझे बहुत असरदार लगी वो है नजरिए की भूमिका, द पावर ऑफ पर्सपेक्टिव।
हाँ, ये कि हम हालात को कैसे देखते हैं।
बिल्कुल, हम किसी भी स्थिति की व्याख्या कैसे करते हैं ये तय करता है कि हम कैसा महसूस करेंगे, और हम अपनी व्याख्या बदल सकते हैं। ये हमें अपनी भावनाओं का मालिक बनाता है, गुलाम नहीं।
सही कहा। और चौथी बात, शायद थोड़ी मुश्किल लगे पर जरूरी है, पीड़ा या दुख जीवन का हिस्सा है और ये उपयोगी भी हो सकता है।
उपयोगी कैसे?
क्योंकि इससे भागने की बजाय अगर हम इसे स्वीकार करें और इससे सीखें तो ये हमें ज्यादा मजबूत, ज्यादा लचीला और ज्यादा हमदर्द बना सकता है। वो दो तीरों वाली बात याद है ना, दर्द शायद जरूरी हो पर दुख यानी सफरिंग हमारी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है।
और शायद एक पांचवी बात भी जोड़ सकते हैं, नकारात्मक भावनाओं पर काबू पाया जा सकता है। गुस्सा, नफरत, जलन, ये स्थायी नहीं है।
हाँ, ये पत्थर की लकीर नहीं है,
ये मानसिक आदतें हैं जिन्हें धैर्य, समझ और सही अभ्यास से बदला जा सकता है। और अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो ये बातें कितनी रिलेटेबल हैं, हमारे यहाँ समुदाय और रिश्तों पर कितना जोर दिया जाता है।
बिल्कुल, जो करुणा और जुड़ाव वाली बात से सीधे जुड़ता है।
हाँ, और मुश्किलों से जूझकर आगे बढ़ने की कितनी कहानियां हैं हमारे आसपास, वो पीड़ा से सीखने वाली बात को सच करती हैं। और मन की शांति की खोज तो हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा रही ही है। इस किताब में ऐसी बहुत सी पंक्तियां हैं, ऐसे विचार हैं जो दिमाग में अटक जाते हैं, सोचने पर मजबूर करते हैं। कुछ खास विचारों का सार अगर हम फिर से दोहराएं?
हाँ जरूर। पहला तो शायद यही है कि जीवन का असली मकसद, उसका मूल उद्देश्य खुशी की तलाश करना है। ये बात याद दिलाती है कि खुशी कोई साइड चीज नहीं बल्कि हमारी बुनियादी प्रेरणा है।
बिल्कुल। दूसरी जो मुझे बहुत पसंद है, अगर आप दूसरों को खुश देखना चाहते हैं तो करुणा का अभ्यास करें, और अगर आप खुद खुश होना चाहते हैं तो भी करुणा का अभ्यास करें।
वाह, मतलब करुणा का डबल फायदा है।
हाँ, ये दूसरों के लिए भी अच्छी है और हमारे अपने लिए भी। इससे बेहतर विन विन सिचुएशन क्या होगी?
तीसरी, वो दो तीरों वाली बात का सार, दर्द अनिवार्य है पर पीड़ा वैकल्पिक है। यानी बाहरी चोट लग सकती है पर अंदर कितना दुख महसूस करना है ये बहुत हद तक हमारे हाथ में है। ये हमें अपनी प्रतिक्रिया चुनने की ताकत देता है।
और चौथी, जो आज की भागदौड़ वाली दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, खुशी का असली स्रोत पैसा और ताकत नहीं बल्कि दिली गर्म जोशी है।
दिली गर्म जोशी मतलब?
मतलब अंदर के गुण, दया, स्नेह, दूसरों से सच्चा जुड़ाव। सच्ची टिकाऊ खुशी इनसे मिलती है, न कि बाहरी चमक दमक या उपलब्धियों से।
ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रेरणा मिलती है, लेकिन वो कहते हैं ना, असली सवाल इसे रोज की जिंदगी में कैसे उतारें? क्या कुछ छोटे छोटे प्रैक्टिकल कदम हैं जो अमाद से ही उठा सकते हैं?
हाँ बिल्कुल, किताब सिर्फ फिलॉसफी नहीं ही देती, एक्शन प्लान भी देती है। जैसे एक तरीका है विश्लेषणात्मक ध्यान,
एनालिटिकल मेडिटेशन।
ये क्या होता है?
जब भी कोई तेज नकारात्मक भावना उठे, मान लीजिए गुस्सा आ रहा है या जलन हो रही है, तो बस उसमें भय मत जाइए, एक पल रुकिए और सोचिए ये भावना क्यों आई, क्या इसका कोई ठोस कारण है, क्या ये भावना मेरे या किसी और के लिए फायदेमंद है, इसके बुरे नतीजे क्या हो सकते हैं। इस तरह सोचने से उस भावना की पकड़ थोड़ी ढीली पड़ जाती है।
अच्छा, मतलब भावना को महसूस करते हुए भी उसके बारे में सोचना, उसका विश्लेषण करना। हाँ, दूसरा है नजरिया बदलना, पर्सपेक्टिव शिफ्ट, जिसकी हमने बात की। रोजमर्रा की छोटी मोटी झुंझलाहटों को देखने का ढंग बदलिए। ट्रैफिक में फंस गए, गुस्सा करने की बजाय सोचिए चलो 5 मिनट शांति से बैठने का मौका मिला, या थोड़ा संगीत सुन लेता हूँ। ये अभ्यास से आएगा, एकदम से नहीं होगा।
और करुणा के लिए क्या करें?
सक्रिय करुणा, एक्टिव कंपैशन, जानबूझकर कॉन्शियसली दिन में कोई एक छोटा सा काम करे जो दयालु हो। किसी के लिए दरवाजा पकड़ लिया, किसी की सच्ची तारीफ कर दी, किसी परेशान सहकर्मी की बात बस ध्यान से सुन ली। दूसरों की जगह खुद को रख कर देखने की कोशिश करें, जिसे हम सहानुभूति कहते हैं, और मनी मन लोगों के लिए अच्छा सोचें, उनके भले की कामना करें।
और जब दूसरों से कोई मतभेद हो, झगड़ा हो जाए, तब क्या करें?
तब अपनी प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी लें। अक्सर हम दूसरे की गलती गिनाने लगते हैं। किताब कहती है पहले अपनी भावना पर ध्यान दें। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो ये मेरा गुस्सा है, मैं इसे कैसे संभालता हूँ ये मेरी जिम्मेदारी है, चाहे दूसरा कितना भी गलत क्यों ना हो।
ये मुश्किल है पर जरूरी बात है।
और एक और चीज, मानसिक प्रतिरक्षा, मेंटल इम्यूनिटी बनाना, जैसे शरीर की इम्यूनिटी होती है ना बीमारियों से लड़ने की,
हाँ।
वैसे ही मन की भी इम्यूनिटी बनाइए। याद करिए कि आपने पिछली मुश्किलों का सामना कैसे किया था, उनसे क्या सीखा था। यह आपको आने वाली चुनौतियों के लिए आत्मविश्वास देगा।
और शायद अपने लक्ष्यों को फिर से देखना भी जरूरी है।
बिल्कुल। क्या हमारे जीवन के लक्ष्य सिर्फ बाहरी चीजों पर टिके हैं, पैसा, पद, शोहरत? कोशिश करें कि आंतरिक लक्ष्यों को भी उतनी ही अहमियत दें, जैसे मन की शांति, रिश्तों में गहराई, जीवन में कोई अर्थ खोजना। अगर आप मुझसे पूछें तो इस किताब से जो सबसे बड़ी सीख मुझे मिली वो ये है कि खुशी कोई लॉटरी नहीं बल्कि एक सीखा जा सकने वाला हुनर है। ये आइडिया कि हम अपनी खुशी के लिए जिम्मेदार हैं और उसे बढ़ा सकते हैं, ये बहुत एम्पावरिंग है। और वो करुणा वाली बात कि दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई छिपी है, ये वाकई दुनिया देखने का नजरिया बदल देती है।
मेरे लिए शायद सबसे असरदार बात दुख और तकलीफ को देखने का तरीका बदलना रहा है। ये समझना कि मुश्किलें हमें तोड़ सकती हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो वो हमें बना भी सकती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये किताब सिर्फ उम्मीद नहीं जगाती बल्कि उस उम्मीद को हकीकत बनाने के लिए प्रैक्टिकल औजार भी देती है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी जीने के लिए एक यूजर मैनुअल मिल गया हो।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।